नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 5 अप्रैल 2019 के इस कार्यक्रम में सुनिए, म्यांमार में सुरक्षा बलों के हमले में रोहिंग्या समुदाय के 7 लोगों की मौत, 18 घायल, हेलीकॉप्टर के जरिए गोलाबारी की कड़ी निंदा, लीबिया में राजनीतिक अस्थिरता का समाधान तलाशने के प्रयासों के बीच फिर बढ़ा विरोधी गुटों में झड़पों का खतरा, यूएन महासचिव ने शांति की अपील की, दुनिया में 1/4 स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं है उचित साफ सफाई और पानी की बुनियादी सुविधा, और पिछले साल 11 करोड़ लोगों को नहीं मिला जीवन जीने के लिए जरूरी पर्याप्त भोजन। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार में सुरक्षा बलों और हथियारबंद अलगाववादी गुटों के बीच झड़पें तेज होने की खबर है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राखिन प्रांत में सेना ने एक हमले में हेलीकॉप्टर से गोलाबारी की है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कड़ी निंदा की है। खबर है कि 3 अप्रैल को सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने एक गांव में अपने मवेशियों और धान के खेतों की देखरेख कर रहे रोहिंग्या मुस्लिमों को निशाना बनाया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 18 घायल हुए हैं। जिनीवा में यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने पत्रकारों को बताया,
These particular killings we have been able to verify with some certainty. This is why we're putting it out there that there was a helicopter attack.
इस हमले के संबंध में हमें वीडियो और तस्वीरें मिली हैं, जिससे इन मौतों की पुष्टि कर पाना संभव हुआ है। हेलीकॉप्टर के जरिए हमला किया गया, बम गिराए गए और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 18 घायल हुए। पीड़ित रोहिंग्या समुदाय से थे। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि म्यांमार की सेना फिर से अपने ही आम नागरिकों के खिलाफ हमले कर रही है। इन हमलों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। हिंसा तुरंत रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। लीबिया सहित मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के कई देशों का दौरा कर रहे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि लीबियाई नागरिकों के नेतृत्व में राजनीतिक समाधान को तलाशना ही यूएन का एजेंडा है। संयुक्त राष्ट्र लीबिया के लोगों का कल्याण चाहता है। 2011 में पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सत्ता से हटने के बाद से ही लीबिया राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, जिसका समाधान ढूंढने के लिए यूएन प्रमुख ने कई स्थानीय नेताओं से अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की। इस संबंध में देश के राजनीतिक भविष्य पर विचार विमर्श के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन कराए जाने की भी योजना है। इस बीच लीबिया के पूर्वी हिस्से में तैनात कमांडर खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी के राजधानी त्रिपोली की ओर बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। कमांडर हफ्तार पूर्वी हिस्से में एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे हैं। यूएन प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि खूनी संघर्ष को टाला जाएगा, क्योंकि समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं है। लीबिया में मौजूदा अंतरिम सरकार शांति कायम करने के प्रयासों के तहत देश भर में विरोधी गुटों और नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। इसी साल देश में लोकतांत्रिक चुनाव कराए जाने की भी योजना है। लीबिया से पहले महासचिव गुटेरेश मिस्र में थे, जहां उन्होंने काहिरा की ऐतिहासिक अल अजहर मस्जिद का दौरा किया। इसके बाद एक अपील जारी कर उन्होंने सभी समाजों, पंथों और संस्कृतियों से एक साथ आने की अपील की। दुनिया में लगातार बढ़ रही असहिष्णुता पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने नफरत फैलाने वाले नेताओं और भाषणों को खारिज कर देने का आग्रह किया। उन्होंने याद दिलाया कि ये काली ताकतें लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक स्थिरता और शांति के लिए बड़ा खतरा हैं, जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और शरणार्थियों को कलंकित करने का प्रयास करती हैं। इस चुनौती से निपटने में धार्मिक नेता अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ पानी का उपलब्ध न होना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग गंभीर जोखिमों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 25% स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां साफ पानी की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। साथ ही हर 5 में से 1 स्वास्थ्य केंद्र पर शौचालय की सुविधा नहीं है। इस समस्या से 1.5 अरब लोग प्रभावित हैं। पानी और साफ सफाई की उचित व्यवस्था के बगैर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों में भी संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में तकनीकी अधिकारी मैगी मॉन्टगोमरी ने उम्मीद जताई कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रभावित देश कदम उठाएंगे।
First of all, I think we can expect that at the national level, the countries take a look at this data and they start to say, hey, why is our country doing so poorly?
सबसे पहले तो हम ये आशा कर सकते हैं कि देश इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि हमारा देश इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहा है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य असेंबली का एक प्रस्ताव है जिसके अनुसार इन मुद्दों पर सीधे स्वास्थ्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए इन आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्रालयों को ध्यान देना होगा। उनकी कई योजनाओं और संकल्पों के बावजूद ये स्थिति बनी है। ये थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की अधिकारी मैगी मॉन्टगोमरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी तरह का संक्रमण त्वचा पर आसानी से रह सकता है और जख्म होने पर शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये बीमारी का कारण बन जाता है। इस संचारण को हाथ धोकर रोके जाने की आवश्यकता है। विश्व के निर्धनतम देशों में रह रहे लोगों के इन बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहता है और वहां भी इसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं और नवजात शिशुओं को उठाना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रभावित देशों से इलाज योग्य संक्रमणों की रोकथाम के लिए समुचित प्रयास करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशलेट ने कहा है कि हैती विकास और शांति रक्षा के दौराहे पर खड़ा है। अब तक हैती में जो प्रगति हुई है उसे और मजबूत बनाया जाना होगा, नहीं तो उसके पूरी तरह खोने का खतरा है। सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने कहा कि हैती में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए जरूरी समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि विकास और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। हैती में संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा मिशन अगले 6 महीनों में पूरा होने वाला है, जिसके बाद वहां एक विशेष राजनीतिक मिशन के शुरू होने की आशा है। साल 2004 में यूएन शांति रक्षकों को पहली बार हैती में तैनात किया गया, जिसके बाद से वहां मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन लोक शिकायतों, भ्रष्टाचार और कमजोर संस्थाओं जैसी व्यवस्थागत खामियों की वजह से अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं। इस साल फरवरी में हैती के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 घायल हुए। बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी मामले सामने आए थे। दुनिया के 53 देशों में पिछले साल 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जरूरत के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाया। वो खाद्य असुरक्षा का शिकार रहे, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहा। 2017 में ऐसे लोगों की संख्या करीब 12 करोड़ थी। ये तथ्य खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूरोपीय संघ की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट में उभर कर सामने आए हैं। रिपोर्ट दर्शाती है कि भूख की गंभीर समस्या से पीड़ित 2/3 से ज्यादा लोग सिर्फ 8 देशों, अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया और यमन में रहते हैं। इसके अलावा 42 देश ऐसे हैं जहां 14 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। पिछले साल जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं ने लगभग 3 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया। इस समस्या से निपटने के लिए हिंसक संघर्षों को रोकने और शांति को टिकाऊ बनाए जाने में निवेश को जरूरी बताया गया है। इससे जिंदगियों को बचाने, आजीविका के साधन बचाने सहित भुखमरी के मूल कारणों को दूर करने में मदद मिल सकेगी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।